लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर फिलमोन एक्का येसु समाजी के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा आधार है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। यह व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास हेतु अवसर प्रदान करती है। इससे व्यक्ति को ज्ञान, विवेक एवं समझदारी प्राप्त होती, जिससे वह सफल एवं सक्षम बनता है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को धन, सम्मान एवं अवसर तीनों प्राप्त होते हैं। वह खुद का एवं दूसरों का भी पथ प्रदर्शन कर सकता है। जहां भारत की उन्नत शिक्षा पद्धति को देश के आर्थिक विकास का मुख्य योगदान दाता तत्व माना जाता है, वहीं भारत में आधारभूत शिक्षा की गुणवत्ता फिलहाल एक चिंता का विषय है। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने और उन पर दूसरे कार्यों का जबरदस्त बोझ का बच्चों की पढ़ाई पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रचुर सामग्री उपलब्ध कराकर छात्रों एवं शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की पहल की है, पर कई बच्चे इसके दुरुपयोग के कारण अपने मंजिलों से भटक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को किस तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद दी जाए ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो एवं समाज का स्तर ऊंचा उठ सके। शदे फादर फिलमोन एक्का येसु समाजी आज इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फादर फिलमोन एक्का येसु समाजी के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, खास करके हमारे माइनॉरिटी स्कूल्स में हमारे शिक्षकों को दोहरा नीति से देखा जाता है। कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त है, कुछ विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं भी तो उनको जो वेतन मिलता है उसके लिए बार बार हो हल्ला करके भीख मांगना पड़ता है। वैसे ही अभी जो मैं हाल ही के विद्यालय में था, वहां पर मान्यता प्राप्त है लेकिन वित्त रहित है। जो शिक्षक को जो हम वेतन देते हैं एकदम नहीं के बराबर है। जो फीस जमा होता है, जो संग्रह करते हैं, उसी को ही उनको शिक्षकों के लिए बांटते हैं। इसलिए उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पेमेंट के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर जिस दिन सरकार दोहरा नीति छोड़ करके सभी विद्यालयों को एक नजर से देखे, सभी शिक्षकों को समान वेतन दे, तो उनको जो परिवार को कैसा चलाएं, क्या करें, पैसा नहीं है, नहीं है, जो समस्या और टेंशन रहता है उससे दूर रह करके वे लोग अपना काम जो ठीक से करना है उसको, अच्छा पेमेंट नहीं मिलने के कारण वो लोग चिंता से ग्रसित रहते हैं। परिणाम वे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या सेवा नहीं दे सकते हैं। इसलिए उनको अगर अच्छी सेवा देनी है तो सरकार उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखे तो और ही अच्छी बात होगी। उसे ही विद्यार्थियों के नजरिया से देखा जाए तो समस्या यही है। आज के बच्चे, आज की जो दुनिया की रंग रैली है, सिंगार पतार है, गान भजन है और बहुत सारे चीजों से वे लोग इतना अधिक प्रभावित हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अगर जहां बगल में शादी हो रहा है सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके शादी घर चले जाएंगे। कहीं पर कुछ सिनेमा दिखाया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रात को कितना भी चाहे रात भर बैठ के देखना क्यों ना पड़े, वे लोग उसे ही उधर बिता देंगे और इधर क्लास कमरे में जब पढ़ाई हो रही है तो झुकते हैं। किस प्रकार की समस्या हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो वो समस्या है, छात्रों की दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो मूल रूप से ये दो समस्याएं मैं देखता हूँ।
इसके बावजूद कुछ बच्चे हैं जो सचमुच अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
वास्तव में एक टोकरी में 100 आम रखा हुआ रहता है तो सभी सड़ता नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस कठिन परिस्थिति से रह करके भी वे लोग अच्छा काम कर जाते हैं, करने की तमन्ना रखते हैं। अर्थात मेरा सोच और देखना यही है कि आजकल के बच्चे लोग लक्ष्यहीन हैं। अगर वे लोग लक्ष्य लेकर के पढ़ेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम एक अच्छा शिक्षक बनेंगे, और जो भी बनने की उनकी इच्छा है, वो लक्ष्य अगर सामने है तो मैं सोचता हूँ वे छात्र छात्रा वे लोग बहुत ही अच्छा कर डालते हैं। चाहे गरीबी क्यों ना हो घर में, खाने पीने के लिए रहे चाहे तो नहीं, या और अन्य चीजों की असुविधा हो। मैं तो अपने ही जमाने की अपने आप को ही देखता हूँ, किस प्रकार मैंने अपने जीवन को, जो मेरी इच्छा थी एक पुरोहित बनने की, मैंने भी कई तरह के संघर्ष झेले, मेहनत किए और परिश्रम किए, और इसी का परिणाम कि ईश्वर की आशीष और कृपा से हम इस मुकाम तक पहुँच पाए।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर फिलमोन एक्का येसु समाजी के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
शरण तिहारे
आया हूँ, शरण तिहारे
जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे, जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के।
सागर में जीवन नैया,
भव सागर में जीवन नैया,
डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले, निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, हे प्रभु मेरे सहारे,
हे प्रभु मेरे सहारे, जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के,
हे प्रभु यीशु प्यारे, जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका एडमिशन। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, आए दिन आपने गौर किया होगा कि आपके शहर में या कहें तो आपकी गली में भी या हर मोड़ पे विभिन्न नामों के केजी, नर्सरी, प्राइमरी, प्राइवेट स्कूल दिखाई पड़ेंगे और यह मशरूम की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऊपर से उनका प्रचार आप टीवी, समाचार पत्रों और सड़क के किनारे बड़े बड़े विज्ञापन बोर्डों में देख सकते हैं। आज तो मोबाइल में भी विज्ञापन आते हैं, एक से एक सुंदर, आकर्षक। किसी में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा तो किसी में नए टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। ये जरूरी नहीं कि जिस स्कूल की फीस ज्यादा है तो शिक्षा भी ढंग की दी जाती है। बड़े और नामी स्कूलों में एडमिशन के लिए तो सालों पहले नंबर लगाना पड़ता है। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को किस स्कूल में दाखिला कराएं, ये बड़ी समस्या बन जाती है। अगर एक स्कूल ठीक जचे तो उस स्कूल की फीस उनके पारिवारिक बजट में नहीं आता। इसी समस्या के समाधान पर प्रकाश डालते हुए हम प्रस्तुत करते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका एडमिशन।
सुनो, मैं सोच रही हूँ अब की एक बेहतरीन डाइनिंग टेबल खरीदने की।
लगता है गजाला, अब की तुम अपना घर का बजट बिगाड़ने पर तुली हुई हो।
ये लो और सुनो। अरे, डाइनिंग टेबल खरीदने से भला घर का बजट कैसे बिगड़ जाएगा? बजट में एडजस्ट करके ही तो टेबल खरीदी जाएगी विथ प्लानिंग।
तुम्हें कुछ होश भी है गजाला? बजट एडजस्ट करना है और प्लानिंग करना है तो अपने बेटे अमान के स्कूल एडमिशन की भी कुछ ख्याल करो। माशाअल्लाह, हमारा बेटा अब स्कूल जाने लायक हो गया है।
हाय अल्लाह, मैं तो बिल्कुल ही भूल बैठी थी कि हमारा बेटा अमान अब इतना बड़ा हो गया है और हमें अपने नूर नजर की कोई परवाह ही नहीं।
वही तो मैं भी फरमा रहा हूँ।
तो फिर क्या सोचा है आपने, कौन सी स्कूल में दाखिला करवा रहे हो अपने नूर चश्म का?
वही तो मैं भी सोच रहा हूँ गजाला कि अमान का दाखिला कहाँ कराया जाए। आजकल स्कूल तो जैसे स्कूल न रहकर कमाई करने की एक दुकान बन गए हैं।
तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसके बारे में तो हमने कभी भी सोचा ही नहीं।
जब होने को बहुत सारे स्कूल हैं, मगर उनमें से चुने किसको सवाल ये है, क्योंकि दावा तो सभी स्कूल यही करते हैं कि हमारे यहाँ की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है वगैरह वगैरह।
और तो और, कुछ स्कूल तो आजकल इंटरनेशनल स्कूल होने का दावा भी करते हैं।
बिल्कुल, जब उनकी पढ़ाई के बारे में पता करो तो पता चलता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है।
वो अपने बाजू वाली मिसेस कटपाल के बच्चे को ही देख लो, केजी से फर्स्ट में आ गया है, लेकिन इंग्लिश बोलना तो दूर, उसे तो अभी तक लिखना पढ़ना ही नहीं आया है, जबकि तालीम देना तो सबाब का काम माना गया है। लेकिन लोग हैं कि इस पुण्य और पाक पेशे को कमाई का जरिया बनाए बैठे हैं।
मैं तो कहता हूँ कि सरकार को तमाम प्राइवेट स्कूलों का न लाभ न हानि की बुनियाद पर चलाने की पाबंदी लगा देनी चाहिए।
लेकिन फिर घूस और रिश्वतखोरी का क्या होगा?
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए।
मेरी मानो तो कहीं पर भी डाल दो, जैसा कि सभी माँ बाप करते हैं।
तुम भी क्या बात करती हो गजाला, अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को कुएं में ढकेले तो क्या मैं भी अपने बच्चों को कुएं में ढकेल दूँ?
अरे, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जैसे सभी माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं डालते ही हैं, वैसे ही हमें भी डाल देना चाहिए।
बिना ये देखे भाले कि वहाँ बच्चे को वास्तव में पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने के नाम पर ढोंग किया जा रहा है और फीस वसूली जा रही है।
तो फीस तो सभी भरते हैं अपने अपने बच्चों की।
तो मैंने कब कहा कि वे फीस नहीं भरते? उनके पास फालतू फीस भरने के लिए फालतू पैसा हो सकता है, मेरे पास नहीं है। मैं अपने रुपयों का सही इस्तेमाल होते देखना चाहता हूँ।
हाँ, ये तो है।
और तुम्हें पता है गजाला, आजकल प्राइवेट स्कूल वालों ने एक और पॉलिसी निकाली है, वे अपने यहाँ 12th पास या फिर अनट्रेन्ड ग्रेजुएट को टीचर की नौकरी पर रख लेते हैं।
सही है, इससे बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान होता है।
हुआ करे उनकी बला से, उनका तो फायदा ही फायदा होता है।
वो कैसे?
अरे, सीधी सी बात है, इन्हें 12th पास या अनट्रेन्ड ग्रेजुएट को ज्यादा तनख्वाह नहीं देना पड़ती, वे इनसे ज्यादा अमाउंट पर साइन कराते हैं और कम अमाउंट हाथ में पकड़ाते हैं।
अच्छा।
हाँ, और फिर इनको परमानेंट तो करते नहीं, जब चाहे इन्हें निकाल कर फिर ऐसे ही किसी और उम्मीदवार को रख लेते हैं।
लेकिन ऐसा क्यों करते हैं वो?
वे ऐसा इसलिए करते हैं गजाला, क्योंकि हर साल इनके पुराना हो जाने पर तनख्वाह बढ़ाना नहीं पड़ती, पुराना होने से पहले ही ये उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं।
ओहो, वाकई आज के ज्ञान के इन मंदिरों के संचालकों ने तो इन स्कूलों को शोषण और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया है। लेकिन शायद सभी ऐसे ना हो।
आज के जमाने में किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आता।
तो फिर क्यों ना किसी से सलाह मशवरा करके अमान के दाखिले के काम को अंजाम दिया जाए।
सलाह मशवरा करें भी तो किससे, सब ने अपनी अपनी समझ और अपने अपने फायदे के हिसाब से काम किया होगा, किससे करें मशवरा।
मेरे मामू जान कैसे रहेंगे?
वो हकीकत कम और अपनी समझ ज्यादा बयां करेंगे।
तो फिर अपने किसी दोस्त के बारे में सोचो।
दोस्त की बात है तो फिर सोचना क्या, अपना मयंक है तो सही, उसी से पूछ लेते हैं।
ठीक है,
तो फिर शाम को चलते हैं उसके।
आओ रशीद आओ। सलाम भाभी। अरे रश्मि यहाँ आओ जरा।
क्या बात है? अरे सलाम रशीद भाई, वो गजाला भी है।
हाँ रश्मि मैं भी हूँ,
आइए बैठिए।
हाँ भाई रशीद, और सुनाओ आज मेरे गरीब खाने पर कैसे?
बस आप लोगों से मिलने और कुछ सलाह मशविरा करने आ गए हैं।
जरूर जरूर, हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन पहले मैं जरा चाय नाश्ता वगैरह का इंतजाम तो कर लूं।
उसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी।
तो फिर खाना खाकर जाना।
अरे नहीं मयंक भाई साहब, उसकी क्या जरूरत है,
तो फिर चाय नाश्ते की जरूरत तो है ही।
चलिए भाभी वो भी कर लेंगे, मगर पहले सलाह मशवरा तो हो जाए।
अब सलाह मशवरा किस बात पर? क्यों भाभी, कहीं ये दूसरी शादी तो नहीं कर रहे हैं?
नहीं नहीं भाईजान, अभी इनके दिमाग में समझदारी बाकी है। दरअसल हमारा बेटा अमान स्कूल जाने के लायक हो गया है। अब हमारे सामने मुश्किल ये है कि इतने सारे स्कूल हैं, कुछ तो बहुत ही हाईफाई हैं। तो अब हम अमान को किस स्कूल में डालें?
हाँ ये तो वाकई सोचने समझने वाली बात है, क्यों मयंक?
तभी तो हमने सोचा आप लोगों के साथ बैठकर सोचते हैं।
हाँ यार बात तो सोचने वाली है।
तुमने अपने बेटे को कहाँ डाल रखा?
उसे तो हमने सिटी पब्लिक स्कूल में डाल रखा है। हर महीने वहाँ की फीस कम से कम 4.5 से 5 हजार रुपए महीना है, और ट्यूशन अलग से।
अरे इतना तो हमारे बजट के बाहर की बात है।
हाँ
रशीद, तुम्हें तो आजकल के स्कूलों के बारे में पता ही है, तुम तो बस एक काम करना कि बेटे को जहाँ भी एडमिशन दिलाओ तो किसी फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्कूल में ही एडमिशन दिलवाएगा।
इससे बच्चा पहली से लेकर 12वीं क्लास तक बिना किसी परेशानी के पढ़ता रहता है, बार बार यहाँ से वहाँ उसके एडमिशन का झंझट भी नहीं रहता है।
हाँ ये तो सही है।
एक बार एडमिशन करा और बच्चे के 12th पास करने तक निश्चिंत रहो।
हाँ और इसके अलावा एक और बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि जिस स्कूल में भी डाल रहे हो उसकी फीस तुम्हारे पॉकेट के साइज की होनी चाहिए।
बिल्कुल सही,
वरना आजकल फीस भरवाने के बावजूद पता नहीं किस किस की फीस भरते रहना पड़ता है।
इन सब के अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि स्कूल में पता नहीं आजकल के टीचर कितना पढ़ाते हैं कितना नहीं, लेकिन ट्यूशन पर वही टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं
और पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं।
आखिरी बात कि बस अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पर इंग्लिश और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति, एकता, भाईचारे और अपनी मानव संस्कृति की शिक्षा भी दी जाती हो।
मैं समझ गया, वही सचमुच में ज्ञान मंदिर होगा जो हमारे देश के कल के आदर्श नागरिकों को तैयार करेगा। मैं समझ गया।
रश्मि चलो अब नाश्ते की तैयारी करते हैं, अब हम नाश्ता करके ही जाएंगे, हमारा मसला तो हल हो चुका है।
हाँ चलो चलो।
एडमिशन। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या देवस्य, पीटर जमरा, अंतरा करवड़ी और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।